दिन भर 8 फरवरी दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदल। तमिलनाडु में संवैधानिक संकट बरकरार, पनीर सेल्वन ने जयललिता की मौत के जांच के आदेश दिए। दुनिया जहान में देखेंगे जर्मनी में आने वाले शरणार्थियों का क्या असर पड़ रहा है वहां की राजनीति पर।
एक छोटे से गांव में अगर आप 200-300 शरणार्थी भेज देंगे, यहाँ की जनसंख्या 500 है या 1000 है, तो जाहिर है कि वहाँ पे वो बहुत ज्यादा महसूस होगा लोगों को।
चर्चा होगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमरेश द्विवेदी से। तमिलनाडु में जारी राजनीतिक संकट के बीच वीके शशिकला ने साबित कर दिया है कि उन्हें विधायक दल का लगभग पूरा समर्थन हासिल है। कुछ दिन पहले उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था, लेकिन बुधवार देर रात मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके ओ पनीर सेल्वम ने यह कहकर राजनीतिक अस्थिरता के हालात पैदा कर दिए कि उन पर दबाव डालकर इस्तीफा दिलवाया गया था और पार्टी के कई नेता शशिकला को अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने से खुश नहीं हैं। अब मामला राज्यपाल विद्याधर राव के मुंबई से चेन्नई पहुंचकर फैसला लिए जाने पर टिका है। 20 फरवरी से आप अपने सेविंग अकाउंट से 50,000 रुपये हर हफ्ते निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को इसकी घोषणा की। आरबीआई ने यह भी कहा कि 13 मार्च से बैंकों से कैश निकालने की कोई सीमा नहीं रहेगी। अभी हर हफ्ते सेविंग अकाउंट से हफ्ते में 24,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता है। रूस के प्रभावशाली विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी दोबारा चले मुकदमे में एक सरकारी टिम्बर कंपनी से पैसे के हेरफेर के दोषी पाए गए हैं। उत्तर पूर्वी मॉस्को के किरोव शहर की अदालत में दिए फैसले में जज ने कहा कि पैसों की चोरी में नावल्नी की भूमिका मुख्य भूमिका थी। अभियोजक नावल्नी के लिए 5 साल की निलंबित सजा की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि नावल्नी 2018 में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। फैसले के बाद नावल्नी ने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि जज ने जो फैसला सुनाया है वो प्रारंभिक मुकदमे के फैसले से मिलता जुलता है, जिसे यूरोप की मानवाधिकार अदालत ने दोषपूर्ण ठहराया था। जज का आज का फैसला और पुराना फैसला हूबहू मिलता जुलता है, यहाँ तक कि कौमा वर्तनी की गलतियां और गवाही तक, सब कुछ पुराने फैसले से लिया गया है। ये थे एलेक्सी नावल्नी के शब्द। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी घेरा। मोदी ने कहा कि उनके कार्यकाल में इतने भ्रष्टाचार हुए लेकिन उन पर एक दाग तक नहीं लगा।
कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता।
मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस राज्यसभा से वॉकआउट कर गई। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोमालिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के बाद वोटों की गिनती का काम जारी है। इससे पहले संसद सदस्यों ने मोगादिशु एयरपोर्ट के पुराने एयरफोर्स बेस में कड़ी सुरक्षा के बीच नया राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान किया। राष्ट्रपति पद के लिए 23 उम्मीदवार मैदान में हैं और विजेता को कुल मत में से 2/3 मत हासिल करना जरूरी है। ये चुनाव चरमपंथी गुट अल शबाब के हमलों के बावजूद हो रहे हैं, जिन्हें 4 साल से टाला जा रहा है। चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगते रहे हैं। सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत माइकल कीटिंग ने बीबीसी को बताया कि नए राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करेगी कि वो समस्याओं से कैसे निपटते हैं। रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के संदिग्ध बंदूकधारियों ने उसके 6 कर्मचारियों की अफगानिस्तान में हत्या कर दी है। ICRC के प्रवक्ता थॉमस क्लास ने कहा कि संस्था के 2 अन्य कर्मचारी लापता हैं। बताया जा रहा है कि मारे गए सभी लोग अफगान थे जो रेडक्रॉस के लिए काम करते थे। हमला उत्तरी अफगानिस्तान के जोवजान प्रांत में हुआ है। रोमानिया की सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में बच गई है। देश में कई हफ्तों से भ्रष्टाचार संबंधी सरकारी प्रस्ताव को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। बीबीसी समाचार।
दिनभर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की पार्टी महासचिव शशिकला के खिलाफ बगावत के एक दिन बाद भी तमिलनाडु एक संवैधानिक संकट से जूझ रहा है। राज्यपाल विद्यासागर राव ने इस बात के कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो इस संकट का समाधान करने के लिए कब चेन्नई आ रहे हैं, लेकिन शशिकला ने यह स्पष्ट कर दिया है कि करीब करीब पूरा विधायक दल उनके साथ है। विधायक दल की हुई बैठक में 134 में से 130 विधायक उपस्थित थे। बैठक के बाद उन सबको एक होटल ले जाया गया ताकि उनको दूसरी तरफ करने के प्रयास न हो पाए। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
ये जय जय के नारे आपको पन्नीरसेल्वम के घर से आ रहे हैं, जहां पक्ष के काडर कल रात से ही बड़े पैमाने से इकट्ठा हो रहे हैं। अब सुनिए क्या हुआ जब शशिकला अपने पक्ष के दफ्तर पहुंची। इससे शायद ही आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ अलग तरीके का समर्थन मिल रहा है, लेकिन ये समर्थन दोनों को अलग मायने रखता है। पहले सुन लेते हैं पन्नीरसेल्वम का क्या कहना था। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हम अम्मा के नक्शे कदम पर चलते हैं। हम ये निर्णय लिए हैं कि अम्मा के मौत की जांच एक रिटायर्ड न्यायाधीश से करवाएंगे, क्योंकि इस पर बहुत सवाल उठे हैं। हमारी ताकत हम विधानसभा में साबित करेंगे। ये थे पन्नीरसेल्वम के शब्द। दूसरी तरफ शशिकला ने विधायक दल की बैठक बुलवाई और वहां 134 में से 130 विधायक मौजूद थे। शशिकला ने उनको कहा,
ये
विश्वासघात से कोई अन्ना डीएमके को खत्म नहीं कर सकता है। हमारी विरोधी दल डीएमके का ये एक तरीका है अन्ना डीएमके को खत्म करने का, और इसमें पन्नीरसेल्वम उनसे हाथ मिलाए हैं। नहीं तो अभी तक उन्होंने डीएमके के नेता के बयान को क्यों नहीं खारिज किया। ये थे शशिकला के शब्द। पन्नीरसेल्वम तो उनके इल्जाम को खारिज कर दिया, उन्होंने एक और इल्जाम को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उनकी बगावत केंद्र की बीजेपी सरकार की साजिश थी। केंद्र मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने भी इस बारे में स्पष्ट कर दिया। लेकिन आज सारा दिन एक ही सवाल हर तरफ गूंजता रहा कि राज्यपाल विद्यासागर राव क्यों नहीं चेन्नई पहुंचे और इस संवैधानिक संकट को हल नहीं किया। चर्चा यहां तक भी हुई है कि बीजेपी के ही सांसद और वकील सुब्रमण्यम स्वामी और कांग्रेस भी राज्यपाल को आड़े हाथ लिया। उनका कहना था कि जब विधायक दल का प्रस्ताव है तो राज्यपाल को दूसरा चारा नहीं बल्कि शशिकला को शपथ दिलाएं। उनका ये भी कहना था कि अगर आय से अधिक संपत्ति केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगले हफ्ते शशिकला के खिलाफ भी गया तो उनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। बहरहाल अभी ये स्पष्ट हो गया है कि विधायक शशिकला के साथ हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शशिकला के खिलाफ गया तो विधायक कहाँ रहेंगे वो कहना अभी मुश्किल है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब जिक्र विधानसभा चुनावों का। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शामली जिले में शनिवार को मतदान होना है। ये वही इलाके हैं जहां साल 2014 के आम चुनाव से करीब 9 महीने पहले दंगे भड़के थे, जिनमें 60 लोग मारे गए और हजारों लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। उस दहशत भरे माहौल में 7 मुसलमान औरतें सामने आईं और दंगों के दौरान उनके साथ हुए सामूहिक बलात्कार की शिकायत पुलिस में की। बेघर, बेरोजगार और खौफजदा होने के बावजूद ये औरतें और उनके पति मजबूती से इंसाफ की लड़ाई लड़ने को तैयार थे। 3.5 साल बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सामने हैं, बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य इनसे मिली।
हम दंगा पीड़ित वाले, हमारे घरदार भी नहीं बन रहे, इतने कर्ज बंद हो रहे, हमें कुछ तो देव जब इतना वोट देंगे, हमारे में वो मजबूती पढ़ाई नहीं हो रहा तो कहाँ से कर देंगे हम, ना हमें यकीन है सरकार पर जो दे देंगे कुछ कर देंगे।
दंगा पीड़ित और बलात्कार पीड़ित, इनकी पहचान छिपाने के लिए मैं इन्हें नफीसा का नाम दे रही हूँ। शामली जिले के एक शहर में जब मैं इनसे मिली तो रुपए में 98 गुस्सा, 54 हताशा और बाकी बची खुची उम्मीद मिली।
हाँ, चार रुई हुए थे,
चार लोग अरेस्ट हुए थे। पहचान की थी आपने?
हाँ।
और वो चारों को जमानत मिल गई?
हाँ।
कितना टाइम हो गया उस बात को?
जमानत को तो 8-9 महीने पीछे छूट लिए थे।
दंगों के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाना, मेडिकल करवाना, अदालत में बयान देना किसी औरत के लिए आसान नहीं था। घर से बेघर हुई नफीसा भी बताती हैं कि इससे पहले उन्होंने सिर्फ दिल्ली की निर्भया के सामूहिक बलात्कार के बारे में सुना था। वो अनपढ़ हैं और ऐसे मुकदमे कितने लंबे चलते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कोई अंदाजा नहीं था। और सब करने के बाद जब आरोपियों को जमानत मिल गई तो सारा डर लौट आया।
वो तो पता चला भाई, जो 8 लोगों को कुछ तो वो मिला उन्हें सजा, कुछ भी नहीं हो रहा। उन आज कह दो आज फिर दंगा हो रहा, सबसे पहले आ लेंगे कॉटन। देख इतनी दूर आ रहे हैं हम, सबसे पहले आ लेंगे वही 8 लोग।
ऐसा क्यों लगता है आपको कि वे यहीं आएंगे आप ही के पास दोबारा?
ऐसा मनु लगता है अभी इनके खिलाफ ये केस चल रहे लगा है हमें। डर है हमें
क्योंकि केस आपने दायर किया हुआ है इसलिए।
निर्भया के सामूहिक बलात्कार के बाद कानून कड़ा किया गया था। बलात्कार के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुने जाएं और 2 महीने में उनका फैसला आए, ऐसे प्रावधान बनाए गए। दंगों के दौरान किए गए बलात्कार के मामलों के लिए एक नई धारा 376(2)(g) लाई गई। 7 महिलाओं के बलात्कार के ये पहले मामले थे जिनकी सुनवाई इस धारा के तहत होनी थी, पर सजा तो दूर, 7 में से कुछ औरतों के मामले में मुकदमा तक शुरू नहीं हुआ है।
सबने एक आवाज में हमसे कहा है दैट हम चाहते हैं कि हमारे साथ जिन्होंने बुरा किया उन्हें सजा मिले। सबने एक आवाज में ये बात कही है, लेकिन सबने ये भी कहा है कि इसके लिए हमारी कुछ मदद करनी पड़ेगी आपको, हम अपने आप नहीं कर पाएंगे इसको अकेले।
मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की मारिया शकील ने इन औरतों की कानूनी लड़ाई पर रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं और मामले खिंचते चले जा रहे हैं, चाहे गिरफ्तारियां हो, मुआवजा हो या पीड़ितों की सुरक्षा। हर मांग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर ही पूरी हुई है।
सबसे बड़ा लक्षण ट्रायल्स के डिले में हुआ है शुरुआत से लेकर अब तक। वो FIR फाइल करने में हो, जहां 2 लोगों को 2 बार FIR फाइल करने का प्रयास करना पड़ा, फिर चार्जशीट में महीनों लग गए, उसके बाद चार्जेस फ्रेम होने में, 2 में तो अभी तक फ्रेम भी नहीं हुए। पिटीशन फाइल होने के बाद 2015 में चार्जेस फाइल होना शुरू हुए।
ऐसी ही देरी खालिदा के केस में भी हुई। खालिदा को भी ये नाम पहचान छिपाने के लिए हमने दिया है। केस की धीमी रफ्तार और लगातार मिल रही धमकियों से तंग आकर खालिदा ने अपने केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर किए जाने की मांग की है। वो खुद तो मुजफ्फरनगर जिला छोड़ चुकी हैं। उनके पति से मेरी मुलाकात हुई।
मुझसे कुछ नहीं होता, मैं तो मर दूं, अब उसकी अपनी बात है। औरत है वो, उसे ये बहुत बुरा लगा कि मेरे साथ ये हुआ, वो उस बात को भूल नहीं पा रही, तो इस वजह से मैंने समझाया हुआ। वो काफ़ी दिन तो गुम सुम रही, मैंने उसे कहा कोई नहीं चलो जो तुम्हारे नसीब में, तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं, मैं लोगों के खिलाफ लड़ूंगी और मैं लड़ती रहूँगी, मेरी पत्नी है सब तो खड़ा होना पड़ेगा मुझे, और उनके साथ जो है वो अच्छा नहीं हुआ, अगर मैं उनके साथ नहीं खड़ा हुआ तो फिर ऐसे में ये तो अच्छा नहीं होगा, हम लोगों को जिंदगी भर साथ रहना है।
2013 में दंगों से लेकर आज तक में शिकायत करने वाली 7 औरतों में से एक की बच्चा पैदा करने के वक्त मौत हो गई और एक ने बयान बदल लिया तो उसके केस में सभी आरोपी बरी हो गए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की मदद से 5 लाख रुपए मुआवजा और निजी सुरक्षा मिली। कपड़े, बर्तन, छत एक एक कर दोबारा बनाने और खिंचती बेनतीजा कानूनी कार्रवाई चलाने में ये सब नाकाफी सही पर मददगार था। सवाल अब बस यही है, सभी 5 औरतें डर, समझौते और इंसाफ की ख्वाहिश के बीच की ये लड़ाई कब तक और कैसे लड़ेंगी? मुजफ्फरनगर शामली से दिव्या आर्य, BBC।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को होना है। मुरादाबाद के पीतल कारोबारियों पर 8 नवंबर के नोटबंदी के फैसले की तगड़ी मार पड़ी है, क्योंकि इनका ज्यादातर कारोबार नकद में ही होता है। ऐसे में पीतल उद्योग से जुड़े ज्यादातर मुस्लिम कारोबारियों के मन में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश की BBC संवाददाता जुबैर अहमद ने इस रिपोर्ट में।
पीतल नगरी यानी मुरादाबाद का मकबरा इलाका, यहाँ घर घर से पीतल के सामान बनाने के कारखानों में लगी मशीनों की आवाजें अक्सर सुनाई देती रहती हैं। यहाँ के निवासी अख्तर अली भी एक कारखाने के मालिक हैं। वो कहते हैं कि नोटबंदी के कारण पीतल उद्योग की चमक गायब हो गई है।
नोटबंदी की वजह से हमारे कारोबार पे बहुत ज्यादा असर हुआ है। एक तरह का समझ लो 90% हमारा काम जो है बंद हो गया। जो हमारे पहले काम करते थे कारीगर, तो अब वो 10% काम कर रहे हैं। तो अब जब हम अपने लेबर को पैसे नहीं दे पाए तो फिर अपने अपने घर के बच्चे बैठा ले, जो हमारे बच्चे स्कूल पढ़ना जाते थे तो हमें उनको बैठाना पड़ा, मजबूरी थी, क्या करते।
पीतल के 6,000 करोड़ रुपए सालाना वाले इस उद्योग का आधा माल विदेश भेजा जाता है। अख्तर अली का दावा बढ़ा चढ़ा कर बयान देने की एक कोशिश हो सकती है, लेकिन इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि पीतल उद्योग के इस गढ़ में नोटबंदी की मार का असर हर कारखाने पर महसूस किया जा सकता है। अख्तर अली कहते हैं उनका सारा कारोबार कैश पर चलता है।
हमारे सिटी के अंदर जो सारा कारोबार जो कैश में चलता, जो गरीब लेबर है यहाँ पर उनको रोज़ पैसा चाहिए। अब हमारा पैसा नहीं देने के लिए तो वो लोग काम क्यों करेंगे, वो कुछ और काम करने लगे बेचारे, कोई रक्षा चलाने लगा, कोई कुछ और करने लगा।
मुगलों के दौर में शुरू हुए इस उद्योग के प्रोडक्शन या उत्पाद का काम मुस्लिम कारीगरों पर टिका हुआ है, जो पहले से ही गरीबी और निरक्षरता का शिकार है। अब अख्तर अली का उदाहरण ही ले लीजिए, कहने को वो एक कारखाने के मालिक हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उस पर से उनके भाई और बच्चे भी एक ही कारखाने की कमाई पर निर्भर करते हैं। अली संकोच करते हुए बताते हैं कि वो 7 बेटों और 3 बेटियों के बाप हैं। उनके कारोबार में उनके सभी बेटे शामिल हैं। इसे आर्थिक मामलों के माहिर प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। उनके भाई और भाई के बेटे भी उनके कारखाने से जुड़े हुए हैं। नोटबंदी से पीतल उद्योग पर बुरा असर तो पड़ा है, लेकिन क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी होगा? अली कहते हैं
जो हमारे नोटबंदी ने हमें परेशान कर दिया तो फिर हम अपना वोट जो है सोच समझ के देंगे और हम अपना वोट जो है सही मायने में जो फिरका परस्त ताकते हैं उनके खिलाफ देंगे। तो जाहिर बात है हमारे देश के अपने मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, साइकिल को वोट देंगे हम। सोच तो पहले भी थी लेकिन पहले कुछ कमती बढ़ती थी, अब बिल्कुल क्लियर हो गई।
पीतल नगरी के निवासी कहते हैं कि अगर मुसलमान मतदाताओं का वोट न बटा तो मुरादाबाद की 2 विधानसभा सीटों पर उनका फैसला निर्णायक होगा। हाँ, मुस्लिम वोटों के बंटवारे का डर अख्तर अली और उनके साथियों को परेशान करता जा रहा है। जुबैर अहमद, BBC मुरादाबाद।
उत्तराखंड के लिए अलग राज्य का आंदोलन एक क्षेत्रीय अस्मिता का भी आंदोलन था, जिसकी अगुवाई उत्तराखंड क्रांति दल जैसे क्षेत्रीय और सतह स्फूर्त राजनीतिक दल ने की थी। लेकिन पिछले 16 साल में से इस राजनीतिक दल की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। विधानसभा चुनाव में उसे इक्का दुक्का सीटों से ही संतोष करना पड़ा। उत्तराखंड देश में अकेला राज्य कैसे बन गया क्षेत्रीय दलों की दुर्गति का, बता रहे हैं देहरादून से शिव जोशी।
माँ बहनों के कुर्बानी के, बच्चों की कुर्बानी के, माँ बहनों के अपमान के हमें ये राज्य मिला है।
आक्रोश और अफसोस से थरथराती आवाज पूर्व UKD नेता सुशीला बलूनी की है, जो अलग राज्य की मांग के आंदोलन में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ी थी। 90 के दशक में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की लड़ाई में जोर पकड़ा था। आंदोलन यूं तो स्वतः स्फूर्त था, लेकिन राजनीतिक तौर पर उसकी अगुवाई उत्तराखंड क्रांति दल कर रहा था, जिसकी कमान उस समय पहाड़ के लोकप्रिय गांधीवादी नेता इंद्रमणि बडोनी के हाथों में थी। अलग राज्य की लड़ाई को अपनी आवाज देने वाले दिवंगत जनकवि गिरदा ने आंदोलन के पतन को कुछ यूं बयां किया था।
यो बाहर से जो है सो पर भीतरी घाव गहराते हैं, आंखों से लहू रुलाते हैं, सच पूछो उन भोली भाली आंखों का सपना बिखर गया, यह राज्य बेचारा देहरा दिल्ली एक्सप्रेस बनकर ठहर गया।
राज्य का पहला विधानसभा चुनाव 2002 में हुआ। कांग्रेस और BJP का वर्चस्व बन गया था। UKD को 2002 चुनाव में 4 सीटें मिली, 2007 में 3 और 2012 में 1। कांग्रेस और BJP की सरकारों में शामिल होकर उसने अपनी रही सही पहचान भी गंवा दी। कई धड़े उभर आए। एक प्रखर आंदोलन से एक स्वार्थ भरी गुटबाजी में बदल जाने वाली इस गिरावट पर सुशीला बलूनी का दर्द छलक आता है।
हम आज छोड़ रहे थे इनको, देख रहे हैं कि ये उठने की कोशिश करते हैं, तभी अन्य लोग भी इनके विश्वास करेंगे और तब जाकर के इनको मजबूती कहीं मिल सकती है। वरना अब देख रहा तो मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत गलत किया हमने कि जो हमने पिछड़े राज्य की लड़ाई में।
लखनऊ केंद्रित सत्ता संस्कृति ने उठकर देहरादून में अपना नया ठिकाना बना लिया। देखते ही देखते ये ऐसी फली फूली कि लोग कहने पर विवश होने लगे कि इससे अच्छा तो लखनऊ में ही ठीक थे। राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े पत्रकार एक्टिविस्ट और UKD के टिकट पर चुनाव लड़ चुके संजय कोठियाल।
अब उत्तराखंड की जनता को एक फैसला लेना पड़ेगा और एक नए आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी कि जितनी ये जो भ्रष्ट संस्कृति की जो स्थापना हो गई उत्तराखंड में, इसको जड़ समेत उखाड़ने का भी समय आ गया है। मुझे लगता है ये अब आंदोलन एक शक्ल लेगा।
पूरे देश में जब क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय राजनीतिक शख्सियतों का डंका बज रहा था तो उत्तराखंड में ये क्षेत्रीय आवाजें धीरे धीरे मिट रही थी। क्षेत्रीय ताकतों की ऐसी दुर्गति का उत्तराखंड शायद देश का अकेला राज्य होगा जहां मुख्यधारा के दो दलों कांग्रेस और बीजेपी और क्षेत्रीय नेताओं के निजी स्वार्थों और लालच की राजनीति ने एक विशुद्ध पर्वतीय मिजाज वाली पार्टी का वजूद ही निकल लिया। शिव जोशी, बीबीसी, देहरादून।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। जर्मनी 12 फरवरी को अपना नया राष्ट्रपति चुनने जा रहा है। इस चुनाव के बाद जर्मन संसद के लिए 24 सितंबर को वोट पड़ेंगे और इस चुनाव में असली परीक्षा वर्तमान चांसलर एंगेला मर्केल के भविष्य की भी होगी, क्योंकि शरणार्थी संकट समस्या से जूझ रहे इस दौरान जर्मनी में बहुत कुछ बदल चुका है। सुनिए इस बार का दुनिया जहान मोहनलाल शर्मा से।
दुनिया जहां।
Als ich vor fast 5 Jahren das Amt des Bundespräsidenten übernommen habe, da habe ich mich und meine Landsleute
18 Januar 2017 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में राष्ट्रपति निवास वेलव्यू पैलेस से राष्ट्रपति योआकिम गाउक ने आखिरी बार देश को संबोधित किया। उनके भाषण का विषय था हमारा देश कैसा हो। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि सिर्फ एक लचीला लोकतंत्र ही हिंसा और आतंक के खतरे को पराजित कर पाएगा, लेकिन पश्चिमी दुनिया का ये शांत देश अब कुछ कुछ बदल रहा है। लोकतांत्रिक प्रणाली वाले इस देश में चांसलर एंगेला मर्केल की सत्ताधारी कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स सीडीयू और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपी अपने संयुक्त उम्मीदवार विदेश मंत्री फ्रांक वाल्टर स्टाइनमायर को राष्ट्रपति चुनने के लिए तैयार है। वोट प्रतिशत के लिहाज से उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। तो इस राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार हैं और क्या ये चुनाव भारत की तरह ही होता है, जर्मनी के बॉन में काम कर रहे पत्रकार विवेक कुमार बताते हैं।
भारत और जर्मनी के राष्ट्रपति चुनाव जो होते हैं वो लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, यहाँ कोई लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, जो प्रतिनिधि हैं वही चुनते हैं। एक एसपीडी पार्टी के फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं, फिर डी लिंके एक पार्टी है, उनके क्रिस्टोफ गुटरवेग हैं, और जो राइट विंग एएफडी पार्टी है अल्ब्रेक्ट ग्लाजर। इसके अलावा एक आजाद उम्मीदवार भी मैदान में है जो अलेक्जेंडर होल्ड हैं। तो ये चारों लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सब पार्टियों को निश्चित एक परसेंटेज ऑफ वोट मिला हुआ है जो उनके संसद सदस्यों के आधार पर तय है। उसमें जो सीएसयू है, सीडीयू जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास क्योंकि 540 कुल सांसद हैं तो उसके पास 42% वोट है। फिर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जो कि सीएसयू की सहभागी है केंद्र सरकार में इस वक्त, और उन दोनों ने मिलकर ही स्टाइनमायर को नॉमिनेट किया है, तो कुल मिलाकर स्टाइनमायर के पक्ष में लगभग 70% वोट बनते हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि स्टाइनमायर राष्ट्रपति बन जाने वाले हैं। 18 मार्च तक कार्यकाल है मौजूदा राष्ट्रपति का, उससे पहले राष्ट्रपति चुना जाना है तो पद खाली नहीं होता है, तो आमतौर पर 12 फरवरी को जो चुनाव होना है वो निश्चित कर देगा कि अब राष्ट्रपति ये होंगे।
लेकिन जर्मनी के लिए सवाल मात्र नए राष्ट्रपति का नहीं है, सवाल नए चांसलर का भी है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के बाद जर्मनी में संसद के लिए 24 सितंबर को वोट पड़ेंगे और इस चुनाव में असली परीक्षा वर्तमान चांसलर एंगेला मर्केल के भविष्य को लेकर है। 62 साल की मर्केल पहली बार 2005 में जर्मनी की चांसलर बनी थी। चौथी बार वो इस पद की दौड़ में है और इस दौरान जर्मनी में बहुत कुछ बदल चुका है। जर्मनी शरणार्थी संकट समस्या से जूझ रहा है। अफगानिस्तान, सीरिया और इराक से लाखों प्रवासी व शरणार्थी जर्मनी पहुंच चुके हैं। चांसलर एंगेला मर्केल की खुले दरवाजे वाली माइग्रेशन पॉलिसी पर हमले तेज हो चले हैं। बर्लिन में पिछले 55 सालों से रह रहे वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आरिफ नकवी कहते हैं मर्केल निशाने पर हैं।
मर्केल तो इस बार निशाने के ऊपर हैं, क्योंकि मर्केल का रवैया जो था वो शरणार्थियों के लिए नर्म था। मर्केल का ये कहना था कि हम इनके आने के बाद भी अपनी समस्याओं को हल करेंगे, मतलब, लेकिन जनता में यहाँ पे मुश्किलात हो रही हैं। देखिए, आपको एक बात ये बताऊं कि बातचीतों का अंदाजा लोग नहीं कर पाते हैं। एक छोटे से गांव में अगर आप 200-300 शरणार्थी भेज देंगे, जहाँ की जनसंख्या 500 है या 1000 है, तो जाहिर है कि वहाँ पे वो बहुत ज्यादा महसूस होगा लोगों को। इस किस्म की भी जो बातें हुई हैं, मतलब छोटे छोटे इलाकों में जो पहुंचे हैं शरणार्थी, उसका भी बहुत खराब असर पड़ा है।
Dies ist ein sehr schwerer Tag. Ich bin wie Millionen von Menschen in Deutschland entsetzt, erschüttert und tief traurig über das.
was gestern Abend am Berliner Breitscheidplatz.
20 दिसंबर 2016 को बर्लिन के एक व्यस्त क्रिसमस बाजार में एक ट्रक दौड़ा। इस घटना में कई लोग मारे गए। हमलावर शरणार्थी था।
You still believe in the ones that keep on trying.
जर्मनी में प्रवासियों के साथ अनुवादक के तौर पर काम कर रहे टॉम वाइकल्ट बताते हैं इस तरह के हमलों से प्रवासियों के लिए क्या कुछ बदला।
जी, क्राइसिस से पहले से ही, शायद 2-3 साल पहले माहौल चेंज हुआ गया है कि एक वो रेसिस्ट फीलिंग्स है आजकल, और रेफ्यूजी क्राइसिस के वजह से ये बढ़ा है और बढ़ गया। एक और इंसिडेंट बर्लिन का 3-4 महीने पहले म्यूनिक का था। जर्मनी का माहौल और लोगों का वो रेसिज्म मेरे ख्याल से बढ़ता है।
अब जर्मनी में दक्षिण पंथ भी पैर पसार रहा है। यहाँ की अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AFD पार्टी 2013 में बनी और इसकी नीति है एंटी इस्लाम, एंटी माइग्रेंट। तो देश में दक्षिण पंथ का रुझान कैसे बढ़ा? आरिफ नकवी।
जर्मनी के इतिहास पर गौर करें तो माफ कीजिएगा अगर मैं ये कहूँ कि हमें सन 33 को नहीं भूलना चाहिए। ये वो समय था जब जर्मनी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जब जर्मनी में बेरोजगारी बढ़ी थी। उस वक्त यहाँ पर नाजी पार्टी जो थी हिटलर के नेतृत्व में, उसने यहूदियों के खिलाफ नारे देकर और ये वादे करके कि हम यहाँ से करप्शन दूर कर देंगे, हम यहाँ पे विकास भी करेंगे, ये सब चीज़ें वादे करके वो सत्ता में आई थी। इस समय भी अगर आप देखें तो AFDP या इसी के एक वो दूसरी वहाँ पे NPD भी एक वो है जिसके को बैन करने की बात की जा रही है। तो ये पार्टियाँ जो हैं तो वो विदेशियों के खिलाफ नारे लगाकर काफ़ी जनता का विश्वास यहाँ पे हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, और उसकी वजह भी है क्योंकि लोग जो हैं वो असंतुष्ट हैं, तो उसका फ़ायदा ये पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। और जब से इतने यहाँ पर शरणार्थी आए हैं सीरिया से, इराक से, अफगानिस्तान से, ये सब लोग जो आए हैं, तो उससे यहाँ पर माहौल काफ़ी ख़राब हो गया है।
हाल के सर्वेक्षणों को देखा जाए तो मर्केल की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है। तो मर्केल को सबसे बड़ी चुनौती किससे मिल रही है और इसकी वजह क्या सिर्फ शरणार्थी समस्या ही है या फिर ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले के बाद जर्मनी को अपना रुतबा बचाने का संकट भी है? लेप्सिक ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार राय।
मिसेस मर्केल जो हैं, इनको सबसे बड़ा चैलेंज जो मिल रहा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मिल रहा है। अभी मैं यहाँ से लोगों से मिलता हूँ, एक महीने पहले तक लोग बोल रहे थे सी विल विन अगेन, लेकिन अब जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने चेयरमैन को फायर करके एक नया चेयरमैन दिया है, उससे जो है सिचुएशन चेंज हो रहे हैं। इसमें जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो ही रहे हैं, US में हो रहे हैं, ब्रिटेन में हो रहे हैं, और जर्मनी के ऊपर ही सारा यूरोपियन यूनियन एक तरह से डिपेंड करता है। तो अगर जर्मनी थोड़ा सा भी पैर पीछे करेगी तो यूरोपियन यूनियन कोलैप्स कर जाएगा। तो इस समय इस बदलते माहौल में पॉलिटिकल चेंज बहुत डैमेजिंग भी हो सकता है। जो प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं उनके आने के बाद जो है मर्केल की चुनौतियां बढ़ती ही जाएंगी विद इन द कंट्री।
तो अब जबकि जर्मनी को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है, उसकी चुनौतियां न सिर्फ देश के भीतर की हैं बल्कि विश्व स्तर पर खुद की साख बचाने की भी है। मोहनलाल शर्मा, BBC दिल्ली।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। तमिलनाडु में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच वीके शशिकला ने साबित कर दिया है कि उन्हें विधायक दल का लगभग पूरा समर्थन हासिल है। आज बुलाई बैठक में AIADMK के 134 में से 130 विधायकों ने हिस्सा लिया। इस बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन की जांच के आदेश दिए हैं। 20 फरवरी से आप अपने सेविंग अकाउंट से 50,000 रुपये हर हफ्ते निकाल सकते हैं। RBI ने यह भी कहा है कि 13 मार्च से बैंकों से कैश निकालने की कोई सीमा नहीं रहेगी। BBC समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।